أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله. कैसे आप लोग? बहुत ही रिलैक्स्ड होके अच्छे मूड और अच्छे माहौल में हम शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें किसी भी तरह के हिकअप से, किसी भी तरह की कोई रुकावट से बचाते हुए आसान तरीके पे आज का पारा भी करने की तौफीक दे. और आज ही नियत कीजिए. अब देखिए, जब भी कोई चीज़ शुरू होती है या एंड होती है ना, तो उसमें हमारे लिए बहुत कुछ होता है. लेकिन रोज़ा रख के या रोज़े की कैफियत में किसी चीज़ को महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात है. तो आइए तजदीद ईमान करते हैं, तजदीद नमाज करते हैं, तजदीद रोज़ा करते हैं, तजदीद ज़कात करते हैं, और सबसे बड़ी बात पिछले पारे का लेसन, फ़स्तबिक़ुल खैरात, नेकियों से भरा हुआ रमज़ान गुजारना है इंशाल्लाह. हज मबरूर होता है ना, इसी तरह सियामुल मबरूर, नेकियों से भरा हुआ रमज़ान. कुछ लोगों का रमज़ान आम रमज़ान की तरह ही होगा, वही डीली डाली नमाज़ें, वही सब कुछ. और कुछ का रमज़ान बहुत खूबसूरत होगा, कुछ का दरमियाना होगा. चांद की तरह कुछ लोग शुरू में बहुत ज़्यादा नेकियां करेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे, और इसी तरह सो ऑन. हमने उन लोगों में शामिल होना है कि जिनका रमज़ान दूसरे दिनों से खूबसूरत होता है. घबराए बगैर, परेशान हुए बगैर रोज़े को हमने इंजॉय करना है. और आज के पारे में तो ख़ास तौर पे सबक भी यही है कि बारिश बन जाओ, बरसात बन जाओ, समंदर बन जाओ, अपना ज़र्फ़ इतना बड़ा कर लो कि तुम्हें छोटी नेकी का तो ख्याल ही ना आए. तो शुरू करते हैं आज का पारा. पारा नंबर 3 है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर. दारे कुरान 2023 और पारा नंबर 3. आज का पारा बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हम देखेंगे कि जब एक इंसान को हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह का दीन उसकी ज़िंदगी में किस मुकाम पे खड़ा होता है. और जब आप और मैं अपने आप को अल्लाह ताला के इस दीन के साथ दिल की गहराइयों से जोड़ लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी कैसी बनती है. इस साल हम चूँकि सहाबा कराम के मौजू पर बात कर रहे हैं, तो अगर अज़मत सहाबा के नाम पे कुछ बातें कहूँ तो नोट कीजिए, यह आपके मेरे पूरे दिन का ज़्यादा राह होगा. क्योंकि हम जितना ज़्यादा सहाबा की पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते जाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारे अपने दिल में नेकियों का शौक़ उभरेगा. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, बिल आखिर आप उनकी तरह होने लगते हैं. सहाबा कराम को सूरत आल इमरान की आयत 110 में कुन तुम खैरा उम्मत है, खैरा उम्मत का नाम दिया गया. और हम ये बात ज़ादुल खैर से लेकर आज तक कई बार दोहरा चुके कि अम्बिया और रसूल के बाद तमाम इंसानों में सबसे आला मुकाम सहाबा कराम का, वो बेहतरीन गिरोह हैं, खैरुल बरिया हैं. लेकिन सहाबा कराम को ये गैर मामूली अजमत कैसे मिली? क्या ये कोई पुरसरार करामत थी? नहीं, ये अचीव्ड है, ये कस्बी है, वह भी नहीं. दो तरह की नेकियां हमारे नसीब में होती हैं, एक वो जो अल्लाह हमें खुद ही दे देता है. उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दे दी पैदा होने से पहले, किसी को शक्ल अच्छी दी, किसी को अक्ल अच्छी दी, कुछ दिया. लेकिन सहाबा कराम के पास जो खूबियाँ थीं वो वहबी से ज़्यादा कस्बी थी. उन्होंने अपने कौल और अमल से एक ऐसी तारीख कायम की जिसकी मिसाल कभी किसी इंसानी गिरोह ने कायम नहीं की. इसीलिए फिर उनको सबसे अच्छा कहा जाता है. यानी जब हम कहते हैं ना कि अजमत सहाबा है, इसलिए कि खूबसूरत थे, गोरे थे, अरब थे, पैसे वाले थे, नहीं. सहाबा के कारनामों को लिस्ट डाउन कीजिए. सबसे पहला और अनोखा कारनामा मारफत हक है. लोग सच्चाई की ज़ाहरी चीज़ों को देख कर हक को पहचानते हैं. सहाबा कराम ने सच्चाई को उसकी हकीकत के एतबार से पहचाना. लोग मानी हुई सच्चाई को मानते हैं, जिसको सब अच्छा कहने लगे लोग उसको अच्छा कहने लगते हैं. सहाबा ने सच्चाई को अपनी बसीरत के साथ पहचाना. अगर 1, 2, 3 करेंगे तो 8-10 पॉइंट बन जाएंगे. मारफत हक, सच्चाई को उसकी असल से पहचाना, लोगों की ज़ुबान नहीं बोली कि लोग अच्छा कहते हैं तो अच्छा होगा। अगली वजह है कि लोग उस सच्चाई की कदरदानी करते हैं जो एक मस्जिद के गुंबद या मेहराब की तरह से ऊपर दूर से दिखती है। सहाबा ने सच्चाई की कदर उस वक्त की जब वो सिर्फ एक छुपी हुई बुनियाद में पड़ी हुई कोई सच्चाई थी। आप देखिए कि अमूमन लोग उस सच्चाई की ट्रॉफी उठाकर एक चैम्पियन बन जाते हैं जिसके साथ बहुत सारी मादी चीज़ें जमा हो चुकी होती हैं। लोगों में शोहरत होती है, वाह वाह होती है, अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं। सहाबा ने अपने आप को उस सच्चाई के लिए वक्फ किया जो हर किस्म के मादी वजन से खाली थी। वे करना कहते हैं ना, मोमिन तोला जाता है, गिना नहीं जाता। सच्चाई को भी गिना करें। आप रोज़ पारा पढ़ते हैं, दौरे कुरान सुनते हैं, आप 4-5 दौरे कुरान मुख्तलिफ जगह से सुनिए और उसके बाद सोचिए कि इस एक पारे को सुनकर मुझे इस पारे को इधर से सुनकर क्या मिला, दूसरी जुबान से सुनकर क्या मिला, तीसरी से क्या मिला। फिर जब आप वे करते हैं ना, तो सहाबा का मेयार और सहाबा की चॉइस हैवी चीज़ थी। वो मेरी तरह गिनते नहीं थे, 20 तरावियाँ, 8 तरावियाँ, 15 रुकते, ये है वो है, इतने नफल सौत रखते हैं, तस्बीह नमाज में इतनी दफ़ा पढ़ना था, सुभान अल्लाह कितनी दफ़ा, नहीं। सहाबा उस नेकी को पकड़ लेते थे जिसका वजन महसूस होता था। अपने लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि सहाबा वो नेकी अडॉप्ट कर लेते थे जो ज़्यादा वेएबल होती थी। टाइम ज़्यादा लग जाए तो क्या है, ज़रा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़े तो क्या है, एंड पे चीज़ तो ज़्यादा मिलेगी ना। इसके साथ एक और पॉइंट नोट कीजिए कि लोग अमूमन उस सच्चाई का झंडा उठाकर फिरते हैं जिसकी बैक पे एक बहुत बाज़मत तारीख होती है। सहाबा ने एक बेतारीख सच्चाई का साथ दिया और हर किस्म की नफ्सियाती और जिस्मानी कुर्बानी देकर खुद को एक शानदार तारीख बनाई। आप कह सकते हैं कि सहाबा इकराम आने वाली सारी नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला चाहते थे कि एक दफ़ा एक मेयार कायम हो जाए, फ़ाइन आमनू बिमिसली मा आमन तुम भी, एक ऐसा क्राइटीरियन बन जाए कि क्यामत तक के लोगों को रोल मॉडल के तौर पे दिखाया जा सके कि इट्स पॉसिबल। आप जानते हैं कि जब पहली फ्लाइट राइट ब्रदर्स ने फ्लाई की थी वो 6 सेकंड तक चली थी, फिर वो जहाज़ गिरा और ख़त्म हो गया। अब आप कहते हैं सिर्फ 6 सेकंड के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन नहीं, वो 6 सेकंड की फ्लाइट लोगों को बता गई कि इट्स पॉसिबल टू फ्लाई। फिर आज देखिए दुनिया में मिलियंस जहाज हैं। सहाबा कराम वो बुनियादी तौर पे फर्स्ट फ्लाइट थे जिसने लोगों को बता दिया कि वतन और फर्ज के तकाजों से ऊपर उठ के भी जिया जा सकता है, मकसद के लिए भी जिया जा सकता है। और सहाबा कराम अगर अजमत का मीनारा बने तो उसकी वजह क्या थी, गैर मामूली कुर्बानियाँ जो तमाम इंसानियत के लिए एक अब्दी नमूना साबित हुआ। और ये वो लोग थे कि जो ज़िंदगी के हर मरहले में हक पर साबित कदम रहे। हम भी साबित कदम होते हैं लेकिन हर मरहले पे नहीं, कभी कभी नहीं। और सहाबा वो थे जिन्होंने हर शोबे में, ये नहीं कि वो एक फील्ड के चैम्पियन थे, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वही तरीका इख्तियार किया जो इंसाफ और सच्चाई पे मबनी था। वो आज़ाद होते हुए भी असूलों के पाबंद बन गए। ये जुमला 10 दफ़ा लिखिएगा, आज उम्मत मुस्लिमा को इसकी बहुत ज़रूरत है। वो आज़ाद होते हुए भी पाबंद हो गए, इख्तियार रखते हुए भी सच्चाई के सामने अपने आप को बेख्तियार कर लिया। और सहाबा वो थे कि जिनके पास भटकने के बहुत से मौके मौजूद थे, बेराह रवि के मौके मौजूद थे, मगर वो बेराह रो नहीं हुए। उन्होंने हर मौके पे अपने आप को हिदायत के आला मेयार पर पूरी तरह कायम रखा। ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं खुशी का मौका है, कोई बात नहीं वीकेंड नाइट है, कोई बात नहीं छुट्टियां चल रही हैं। और आप देखिए पूरी तारीख खोलिए, हज़रत नूह से लेकर चलिए जो साहिब शरीयत अम्बिया में पहला नाम है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पैगंबर को उसके दौर के लोगों ने पहचाना हो। उस दौर के लोग पहचान भी लेते हैं ना तो नबी का साथ नहीं दे पाते। पिछले पैगंबरों को अफराद मिले मगर जमातें ना मिली। असहाब रसूल का ये एक अनोखा कारनामा है कि उन्होंने इज्तमाईयत की बुनियाद पे, जमात की बुनियाद पे अपने ही दौर के पैगंबर को पहचाना और फिर एक कसीर तादाद में उसके मिशन को अपनाकर उसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि एक स्कॉलर हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, पाकिस्तान के ले लीजिए, अरब के ले लीजिए, इंग्लिश के ले लीजिए, वो अपनी ज़ुबान से हक बयान करते हैं। कोई भी उस्ताद, किसी किसी मुआशरे का, आपके करीब का या दूर का, आपके सामने का या आपसे ओझल। अब वो दीन की बात करता है, कुछ लोग उसकी बात सुनते हैं, मुतासिर होते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, बहुत सारे अच्छा कहते हैं लेकिन उसके साथ नहीं चलते। मुझे याद आ रहा है एक छोटा सा क्लिप मैंने कुछ अरसा पहले सुना था डॉक्टर इसरार साहब का, तो उसका टॉपिक कुछ बड़ा रकीक था कि मुझे शिकवा है लोगों से, तो मुझे उनके वो लफ्ज़ याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने लोगों से बहुत गिले हैं, वो मेरी तारीफ़ें करते हैं, वो मुझे सुनते हैं, मेरी वाह-वाह करते हैं, लेकिन मेरे मिशन में मेरे साथ नहीं चलते हैं। अब ये मैं मिसाल आपको दी इनकी कि उनकी ज़िंदगी में जो लोग उनकी तारीफ़ें करें, कुछ करें। अब आप इसको सहाबा पे लीजिए, सहाबा ने नबी की ज़िंदगी में ना सिर्फ ये कि आपको माना, एडमायर किया, वर्डली इंडिविजुअली वन बाय वन आपका साथ दिया, बल्कि बींग अ होल, जैसे आप कहें कि पूरी की पूरी जमात बनकर अपनी ज़िंदगी को उस मिशन के लिए खपा दिया। ये थी उनकी अजमत। और आज भी वही उस्ताद, वही लीडर, वही स्कॉलर, वही शेख कामयाब है, जिसकी ज़िंदगी में ही उसके साथ चलने वाले, कदम से कदम मिलाने वाले चल पड़े, उसके मिशन को अपना मिशन बनाने वाले बन जाए, कुर्बानियाँ देने वाले, हिजरतें करने वाले, जान माल को वक्फ करने वाले बन जाएं। उसका मिशन आगे चलेगा, उसकी ज़िंदगी में थोड़े लोग सुनेंगे, बाद में ज़्यादा सुनेंगे, उसकी ज़िंदगी में थोड़े लोग लिखेंगे, बाद में ज़्यादा लिखेंगे, थोड़े साथ देंगे, बाद में ज़्यादा देंगे। उसकी ज़िंदगी में कोई धूमधाम नहीं होती, लेकिन उसके जाने के बाद उसका असर होगा, और ये इखलास की बदौलत होता है। माकान अलिल्लाही बकिया, इमाम मालिक ने उस वक्त बोला था जब लोगों ने आकर कहा, आपको पता है कि आपने मौता इमाम मालिक लिखनी शुरू की तो और कितनी मौताएं आ गई पब्लिक में, लोगों ने एक ट्रेंड पकड़ा और शुरू हो गया। आज भी ट्रेंड चले हुए हैं, माजरत है, आज बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। अमल नहीं करना छोड़ो, पढ़ाते हैं, चलो इल्म तो आगे पकड़ो, इसको आगे उगल देते हैं, ट्रेंड चल गया। उन्होंने कहा डोंट वरी, माकान अलिल्लाही, जो अल्लाह के लिए होगा वही बचेगा। और आज पूरी मार्केट में आपको सिर्फ एक मौता मिलती है, और वही मौत इमाम मालिक है। इखलास की बदौलत काम बाद में रहता है। सहाबाए कराम ने नबी के कदम के साथ कदम मिलाया, अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। आज के दौर में भी जो लोग दीन की नशर व इशाअत पे कदम ब कदम चलते हैं, लोगों को वो बेवकूफ़ दिखते हैं, वो जज्बाती दिखते हैं, लोग उनके वापस आने के लिए इंतज़ार में है। पवेलियन में से खेल कर कोई आता है, चलो फिर आएंगे तो फिर इनको पकड़ लेंगे। सहाबा वो खिलाड़ी थे जो गए और फिर वापस नहीं आए। दो नीम इन की ठोकर से सहराओ दरिया, उन्होंने सहरा भी पार की और उन्होंने दरिया भी पार किए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। और सहाबा कराम वो लोग थे कि जिन्होंने उन उजरों को, उजर बहाने, प्रॉब्लम्स, मजबूरियाँ, जिनको देखकर लोग बिदक जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, सहाबा ने उन उजरों को उजर नहीं बनाया, उन्होंने उन्हीं को अपने लिए ताकत बनाया। वो हर किस्म की नाखुशगवार बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपकी लीडरशिप पे मुतमईन रहे, आपकी हिमायत करते रहे, यहाँ तक इसी हाल में दुनिया से चले गए। ईमान पे उनकी मौत हुई। अल्लाह ने नबी सल्लम को एक नबी की हैसियत में उनके बीच में भेजा। ये कोई किसी सियासी लीडर का तकर्रुर नहीं था, कोई वोट्स के जरिए आया हुआ एक कोई कैंडिडेट नहीं था कि उसके पीछे बड़ी कंपेन है, किसी जमात का झंडा है। नबी सल्लम बिल्कुल तन तनहा थे, किसी पार्टी का टिकट उनके पास नहीं था, किसी की बैक नहीं थी, किसी सुपर पावर ने उनको खड़ा नहीं किया था। अल्लाह ने एक ऐसे शख्स को जिसको सारे मादी सहारों से बेनियाज किया, हत्ता कि यतीम पैदा किया, माँ का सहारा गया, दादा का सहारा गया, चचा भी जो था वो भी सारी ज़िंदगी आपकी हिमायत करता रहा, लेकिन आपके मिशन पे ना आया। अल्लाह बताना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक यतीम है मक्का को, एक दुर्र यतीम को मैं एक इतने मुश्किल काम के लिए चुन सकता हूँ, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी तो अपने आप को देखो। अल्लाह चाहते थे कि एक ऐसा वसी इनकलाब पैदा करके वो मिसाल कायम कर दें कि आपके बाद क़यामत तक आने वाले लोगों को ये यकीन आ जाए कि जिसको मिशन की सच्चाई का पता चल जाता है, फिर वो अपनी सारी छोटी बड़ी ज़्यादा थोड़ी जमा पूंजी उठा कर ले आता है। और फिर ऐसे गिरोह के लिए लोग नाकाबिले बयान हद तक, ऐसे गिरोह को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह ने वो काम सहाबा से ले लिया कि जिन्होंने अल्लाह के इस प्लान में, इस नक्शे में रंग भरे, जो इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, खलीफा की सूरत में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौके पे था, वो वहाँ शुरू हुई थी बात, और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के इन साथियों के ज़रिए पूरी हुई। आप कहें कि अल्लाह के मंसूबे को पाए तकमील में पहुँचाने वाली जमात और गिरोह, इनको सहाबा किराम कहते हैं। और फिर इसकी खातिर उन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा और अपने माल को अपना माल नहीं समझा, और उन्होंने इसके लिए अपनी अना को कुचला, अपने ताज को अपने पैरों तले रौंदा, अपनी महबूब चीज़ों को छोड़कर वो इसकी तरफ बढ़े, और उन्होंने ना मानने वाली बात को माना, उन्होंने नाकाबिले बर्दाश्त बात को बर्दाश्त किया, और एक जुमला बड़ा बड़ा करके लिख ले, पैगंबर को पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, किसी भी शर्त और किसी भी तहफ़ के बग़ैर वो आपके शरीकेकार बन गए, वो आपके इस रास्ते में अंसारुल्लाह बन गए। और हकीकत ये एक असहाबे रसूल इंसानी तारीख के एक मुनफरिद गिरोह का नाम है। असहाबे रसूल की अज़मत इससे ज़्यादा है कि कोई इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें। मैं तो बिल्कुल बेबस हूँ जब से मैंने ये टॉपिक शुरू किया है। हालांकि आप कहेंगे कि रोज़ ही कुछ ना कुछ बात तो होती है, लेकिन यकीन करें कि मैं बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस करती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसी जैसे हाथों में जंजीर लगी हो ना, ऐसी बंधी हुई महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान में कोई तासीर तो डाल दे, कोई ताकत तो डाल दे कि मैं सहाबा कराम की अज़मत बयान कर सकूँ। और सहाबा कराम की अज़मत बयान करते हुए आज के बारे का टॉपिक मैं रुक रुक के बोलूँगी, आप लिखिएगा, गैर कायम शुदा सदाकत के लिए माल लुटाना। लिखिए, गैर कायम शुदा सदाकत के लिए माल लुटाना, पहले इस पे चलिए, फिर आपको ये बात समझ आएगी। आप देखिए कि सहाबा की खूबी क्या थी कि वो सच्चाई जो भी कायम ही नहीं हुई, जिसके साथ कोई पंप एंड शो ही नहीं है, लोग उसको जानते ही नहीं हैं, ही इज़ नॉट फेमस, इट्स नॉट पॉपुलर, नो टू मैनी पीपल सब्सक्राइब्स हिम, आज की ज़ुबान में जो मर्ज़ी जुमला बोल दें, सहाबा ने गैर कायम शुदा सच्चाई के लिए अपना माल लुटा दिया। और जब वो आप वाक़ा पढ़ते हैं ना अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो आता है कि कुरान की आयत उतरी कि मंज़ल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, कल के बारे के साथ मैंने आपको वो सारी आयतें लिखवाई हैं कि जिसमें ये आयत आती है, कुरान में इतनी जगह आती है। और अबू दहदा जैसे सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह वाकई हमसे कर्ज चाहता है? आपने फरमाया हाँ अबू दहदा, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अपना हाथ दीजिए। और अभी कहते हैं कि आपने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, फिर यानी वो देख रहे थे ना वहाँ खड़े, तो अबू दहदा ने कहा अल्लाह के नबी ये मैं अपना बाग अपने रब को कर्ज देता हूँ। और उसमें एक बाग था 600 दरख्त खजूरों के, मीठे पानी का चश्मा था, जहाँ अल्लाह के नबी भी आराम किया करते थे। अबू दहदा के लिए वो दिन खुशी का दिन होता था जब अल्लाह के नबी अबू दहदा के बाग में आते और कहते कि मैं अब कुछ वक्त यहाँ गुजारूँगा। वो उनको ठंडे मीठे पानी के चश्मे में से पानी पिलाते थे, और उस वक्त उनकी बीवी जो उम्मेदादा अपने बच्चों के साथ उस बाग में थी, वास देते हैं, या उम्मेदाख्ता उखरुजी, या उम्मेदाख्ता उखरुजी, क्या हुआ? कहा कि मैंने ये बाग अपने रब को कर्ज में दे दिया। बीवी ने कहा या बदाहदा कदर बल बई, तुझे तेरी ये तिजारत कामयाब मिले, तूने बड़ा नफ़े का सौदा किया। और जो थोड़ा बहुत सामान था उनको लेकर बीवी बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ गए। अल्लाह के नबी ने एक कमेंट दिया, कितने ही दरख्त और कितने ही बाग जन्नत में अबू दहदा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये थे वो लोग, एक बाग दिया, 600 दरख्त दिए, एक घर दिया। और ये एक वाक़या नहीं, ऐसे 20 वाक़या था, कल के बारे के साथ भी कुछ सुनेंगे हम। लेकिन जो बात मुझे समझ आई, जो आज मैं आपको रटवाना चाहती हूँ इस बारे के साथ, गैर कायम शुदा सदाकत के लिए माल लुटाना, जब चीज़ें मशहूर हो जाती हैं, जब लोगों की नज़रों में आ जाती हैं, उस पर तो लोग लाइनों में खड़े होते हैं कि हमसे खिदमत लीजिए, हमसे लीजिए। देखिए आप समझिए इसको, आज मैंने बीच में भी इशारा दिया है ना कैंडिडेट का, एक शख्स जो पिछले 20 से सियासत में है, लोग उसका नाम जानते हैं, कोई उसको अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, उसके साथ तो बहुत कुछ है। तो एक नया बंदा कहता है कि चलो इस साल मैं इलेक्शन का टिकट लेके खड़ा होता हूँ, उसको कौन जानता है? जो उसको जान गया, अगर वो सच्चा बंदा है, वो एक है या 100 है या 10 हैं, बाज़ लोग तो कहते हैं कि शुरू में हम इतने थोड़े लोग होते हैं कि जब तस्वीर खिंचानी होती थी तो घर के नौकरों को बुलाकर खड़ा करके फ़ोटो खिंचा के मीडिया में देते थे कि आज इतने लोग आए थे जलसे जुलूस में। पर एक वक्त आता है कि लोग तन मन धन लगाते हैं सहाबा ने नबी सल्लम को एक सियासी लीडर के तौर पर नहीं, एक बिल्कुल सच्चे बंदे की। इसकी बात में सच है, ये कहता सच है, इसकी बात दिल पे असर करती है। तो अबू दहदा का यही एक वाक़या एक नुमाइंदगी करता है कि सहाबा कराम जिस दीन पर ईमान लाए थे उस दीन की खातिर कुर्बानी पेश करने के लिए वो किस कदर बेचैन रहते थे। आज हम जान बचाने के लिए जिस कदर कोशिश करते हैं, सहाबा जान देने के लिए उतनी कोशिश करते थे। और याद रखिए कि आज मैं और आप तो ये वाक़या अबू दहदा का आज सुनते हैं ना, 2 बिलियन फॉलोअर्स हैं नबी सल्लम के दीन के। नहीं, अबू दहदा ने नबी को और उनकी सच्चाई पे घर माल जान कब दिया? 1440 साल पहले। आज कोई शख्स ऐसा इन्फाक कर भी देना तो लोग कहेंगे हाँ भाई लाखों मुसलमानों के दरमियान मकबूलियत की सूरत में इसको बहुत जल्द अपने इन्फाक से ज़्यादा बड़ी शोहरत मिलेगी। मतलब कोई अरब शहजादा आता है, आते हैं बाहर के मुल्कों में बहुत सी मस्जिदें हैं, नॉर्वे में भी हैं ऐसी मस्जिदें, और दुनिया के कई अरब मुल्कों के लोग जो है ना वो देते हैं। वो डेनमार्क में गई जब फर्स्ट टाइम, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद देखी, यानी अनयूजुअल खूबसूरत। तो बाद में पता चला कि कतर से कोई शहजादा आया था तो उसने कहा इधर कोई अच्छी मस्जिद है और वो उसको सपोर्ट करके गया। वो मस्जिद गया, आप जाकर देखें आपका दिल नहीं करता निकलने को। तो ऐसी मिसालें आज हैं, लेकिन अभी भी मैंने बताया ना शोहरत हो गई ना उसकी। सहाबा ने उस वक्त लगाया जब कोई उनको अच्छा कहने वाला नहीं था। अल्लाह के नबी के हालात बड़े मुख्तलिफ थे। उस वक़्त दीन पर अपना माल लुटाना दीवानगी कहलाता था। वो ऊंचे मीनारों पर नुमाया होने की बजाय बुनियाद की ज़मीन में दफन होने के मानी थे। जुमला लिखिए, सहाबा ने मीनारों में नहीं लगाया, और साथ अपना नाम भी लिख दें, बुर्ज खलीफा, बुर्ज जवाद, बुर्ज फलां। सहाबा ने बुनियाद की ईंटों पे अपने नाम लिखाए जो थोड़ी देर बाद मिट्टी में दब जानी थी। वो बेनाम हुए। उस वक्त ऐसा कदम एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक के खाने में लिखा जाने वाला था जिसकी अभी सच्चाई का भी किसी को नहीं यकीन। मुतशबे, आप देखिए कि अभी मुशतबे थी नबी की ज़ात। आप देखिए ना, आपके पास इधर एक दुकान है, 20 साल से आप देख रहे हैं, सबको पता चली हुई है, अच्छी चीज़ें बेचते हैं, ये हैबिट है, ये फलां स्टोर है, ये फलां। आपके गली के कोने पे एक और दुकान खुल जाए, पता ही नहीं अच्छी है कि नहीं, पता नहीं ये प्रोडक्ट क्या देंगे, पता नहीं ये महंगी चीज़ें ना बेचें। अब जो एक एक करके उसको कस्टमर देगा ना, वो उसके प्रोडक्ट पे आएगा। साहबा ने एक नई दुकान को प्रमोट किया और फिर वो पूरी दुनिया की सारी दुकानों के बंद होने का ज़रिया बन गई। सच की ये पहचान है। साहबा कराम को उस वक़्त लोग दीवाना और मजनू और सुफहा कहते थे। आप कह लीजिए कि कैसी मद में उन्होंने अपने एसेट्स पेश कर दिए कि जिसको अभी किसी ने रिकग्नाइज भी नहीं किया था। आज कोई आपका शोहर, मेरा भाई, किसी का बेटा आकर कहता है अम्मी आज मैं काम करके आया हूँ, यकम रमज़ान है ना, तो अम्मा वो मैं अपना सेलफोन जो है ना उसको मैं अल्लाह के रास्ते में दे आया हूँ। हैं, क्या किया, कैसे किया? अब उसकी कोई भी कोशिश कर सकता है, कोई भी बात हो सकती है। फलां जगह लोग भूखे थे, जैसे एक माँ ने मेरे से शेयर किया कि पिछले दिनों जब फ्लडिंग थी तो उनका बेटा बेचैन हो गया, क्या आपने मेरी शादी के नाम पे जो जेवर रखा हुआ है ना उसको बेचें। मैंने अपनी बीवी को जेवर नहीं पहनाना चाहे फ्लड में भेजें। वो कह रही जब तक मैंने वो जेवर बेच नहीं दिया उसने मेरी जान नहीं छोड़ी, और जैसे वो जेवर बिक रहा था वो बच्चा इतना खुश था जैसे शादी के दिन भी कोई ना हो। तो ये रूह किसने दी? ये माँ ने दी, ये कुरान ने दी। सहाबा कराम की नेकी को फिर याद कर लीजिए जो आज के पूरे बारे में मिलेगा, और आप हैरान होंगे। मैं तो अल्लाह की तरतीब पे हैरान हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सहाबा कराम के जो नाम दे रही हूँ ना, ये इस तरतीब से दे रही हूँ कि अबू बकर, उमर, उस्मान, राइट? ये तो आपका आला जरफी है कि आप सोचे, लेकिन आज का पारा गैर कायमशुदा सदाकत के लिए माल लुटाना, ये थीम, ये पॉइंट जिस शख्सियत के नाम है वो हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। तो आज के पारे की शख्सियत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। उस्मान गनी कौन थे, वो क्या थे, आइए ज़रा कुछ पोइट्री उनके बारे में सुन लेते हैं। और इस पे तो मेरी ज़ुबान थक जाएगी, मैं पूरे पारे में बीच बीच में दूंगी, अगर मैंने शुरू में देना शुरू किया तो आधा पौना घंटा इस पर ही लग जाएगा। उस्मान गनी कौन थे, किसी शायर ने कहा महबूब मुस्तफ़ा بھی ہے عثمان ذوالنورین. مشکل لفظ ہے. کہتے ہیں کہ نفس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی نا, اس میں ایک عثمان ہے جن کا لقب ذوالنورین ہے, نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر, رقیہ اور ام کلثوم. اور آپ پتہ یہ دونوں بیٹیاں کون تھیں؟ پلٹائی ہوئی, ڈیوورسڈ. آپ دل پہ ہاتھ رکھیے, بیٹی والے ہیں نا, نبی کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھیں. اور جب قرآن نازل ہوا, محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ میں ڈھلا, تبت یدا ابی لہب بن نازل ہوئی, تو اس کو اتنا غصہ آیا اپنے بیٹوں کو, کہنے لگا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. آج آپ کہتے بیٹی سر پہ اسکارف لے لے گی تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا, بیٹا داڑھی رکھ لے گا تو اس کو رشتہ کون دے گا؟ آپ دیکھیے کہ نبی کو اس رستے میں بیٹیوں کے غم بھی ملے, اور وہی دونوں بیٹیاں یکے بد دیگرے عثمان غنی کی زوجیت میں آئیں. اللہ نے ان کو ان سے اچھا دے دیا. تو کہتے ہیں کہ ذوالنورین دو نوروں والا, پہلی بیٹی فتح بدر کے دن فوت ہوتی ہے, نبی کی ہر خوشی میں غم بھی تھے, اور حضرت عثمان اس جنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے کہ وہ اپنی بیمار بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے. جن لوگوں نے حضرت عثمان پہ باتیں کسی ان کو یہ پیغام دیے گئے صحابہ کی طرف سے کہ وہ اس لیے میدان بدر میں نہیں تھے کہ وہ نبی کے حکم پہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے. اور ایک پیکر سخاب بھی ہے عثمان ذوالنورین. عثمان کی سخاوت کی کہانیاں آج کے پارے کے فرسٹ روپ میں میں سناتی رہوں گی آپ کو جب وہ آیتیں گزریں گی. تو کہتے ہیں کہ چشمے تیری سخا کے ہیں اب بھی رواں دواں, یعنی اے عثمان تیری جنروسٹی, تیری سخاوت کے چشمے آج بھی رواں دواں ہیں. کیسے؟ کنویں کا سلسلہ بھی ہے عثمان ذوالنورین. حضرت عثمان نے کنویں کے کنویں خرید خرید کے مسلمانوں کو دیے ہوئے تھے. ایک کنواں جو ایک یہودی کا تھا, وہ مسلمانوں پہ بغض کی وجہ سے پانی روک رہا تھا. اتنی مسلمانوں پہ تنگی تھی کہ آخر ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید دے تاکہ مسلمانوں کو پانی ملے. عثمان غنی نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا. چاہتے تو ایک ایک درہم, چلو ایک کچھ پیسے ایک ایک ڈول کے رکھ کے بیچتے, اس دور میں پانی بکتا تھا. لیکن عثمان نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے خریدا. اور آپ کو پتا کہ عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی حکومت کے پاس موجود ہے. ایک باغ جو عثمان غنی کا باغ تھا, دیکھنے کا بھی مجھے اتفاق ہوا. ہم اپنے ایک استاد کے ساتھ پورا گروپ میں ہم لوگ گئے تھے عمرے پہ ایک سال میں, تو انہوں نے ہمیں وہ ساری تاریخی زیارتیں کروائی تھی جو عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. اس میں وہ باغ بھی تھا. حضرت عثمان نے وہ باغ وقف کیا اور کہا کہ اس کی پیداوار جو ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے. وہاں سے وہ سلسلہ چلتے چلتے یہ آج کے دور تک پہنچ گیا. کچھ سال پہلے تک ہوتا کیا تھا کہ اس باغ سے ہر سال جو فصل آتی تھی اس کا کیا کیا جائے. پھر اس دور کے علماء کرام بیٹھے, کہا کیا کریں, اس پیسے کا کیا کریں. انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور وہ پیسے اس میں جمع ہونے لگے. اور آج حرم کی توسیع, ایکسپینشن آف حرم میں عثمان غنی کے اس اکاؤنٹ سے بھی پیسے آتے ہیں. 1440 سال ہو گئے, مجھے کیا پتہ میری آج کی یہ نیکی پتہ نہیں سال 100 سال بعد بھی ختم ہو جائے. عثمان کے نام کا آج بھی وہ اکاؤنٹ موجود ہے. وہ نیکیاں کیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو سرے کھلے وہ باہر دوسری طرف چلتے جائیں. راہ خدا میں جان بھی اسباب و مال بھی سب کچھ تیرا فدا بھی ہے عثمان نورین. تو عثمان غنی وہ تھے کہ جنہوں نے کچھ بچایا نہیں, وہ سب کچھ دے کر فارغ ہو کر گئے. ان کی زندگی کی کہانی میں نے سوچی ہے کہ آپ کو الگ سے بھی سناؤں گی. ہم نے ویسے بھی چاروں خلفائے راشدین کے سیمینار کیے ہوئے ہیں لندن سے کچھ سال پہلے, لیکن آج عثمان غنی کے بارے میں پڑھتے ہوئے میرے دل میں آ رہا تھا کہ اللہ یہ دور قرآن میں تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتی, لیکن بس چند کوڈ ورڈ لے لیجیے کہ عثمان غنی داماد رسول تھے. جب پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو اداس رہنے لگے, کہنے لگے نبی سے جو رشتہ داری جڑی تھی وہ ٹوٹ گئی, تو اللہ نے پھر دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دے دی. اور عثمان وہ خوش قسمت ہے کہ جن کے لیے, اور یہ جو روایت ہے نا بیٹیوں والی, یہ ابن ماجہ کی روایت بھی اور بھی حدیثیں ہیں 110, اللہ کے نبی نے عثمان کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہے جنت میں, یعنی جنت میں میرے رفیق ہوں گے. یہ بھی ابن ماجہ 109 ہے. اور اسی طرح سے آپ نے, حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان, یعنی ان تینوں کا نام اکٹھا آتا تھا. ترمذی کی روایت ہے 3707. اور یہ صاحب فضیلت تھے, लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के अहद में हम अबू बकर के बराबर किसी को नहीं करार देते थे कि अबू बकर का बड़ा मुकाम है, फिर हज़रत उमर को और उसके बाद हज़रत उस्मान को, यानी तरतीब से। मैं इंशाल्लाह किसी दिन लिखाऊंगी आपको साहबा क्या कैटेगराइज्ड हैं, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन आप ये सुन लेंगे। तुम्हारा ये रिवायत 3698 बुखारी की रिवायत है। और उस्मान को अल्लाह के नबी का वो खूबसूरत जुमला, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं देगा, ये गज़वे तबूक के मौके पे मिला, जैश उसरा जिसका नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी लाकर कुछ दिया, और हज़रत उस्मान दिरहम अपनी आस्तीन में छुपा कर लाए, और अल्लाह के नबी उनके दिरहमों को ऐसे टटोल रहे थे झोली में जैसे बंदा खुशी से उठालता है ना। फिर आपने कहा कि उस्मान को आज के बाद कोई अमल नुकसान नहीं देगा, और उस्मान वो थे कि जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। मारूफ वाक्य आपने सुना हुआ कि अल्लाह के नबी लेटे हुए थे, आपकी पिंडली खुली हुई थी, एक एक करके सहाबा आते रहे, ऐसे ही लेटे रहे। जो ही उस्मान आए तो आप उठकर बैठ गए, तो कहा ऐसा क्यों किया? कहा मैं उससे हया क्यों ना करूँ जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6209, 6211 और 6210। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने इनके बारे में फरमाया कि इनको जन्नत की खुशखबरी दे दो। तफसीली रिवायत है, लेकिन उसका खुलासा यह है कि इन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी मिल गई थी, और अल्लाह के नबी ने इनको ख़ास तौर पे इस बारे में मेंशन भी किया था। फिर अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में इनको शहीद होने की खुशखबरी दे दी थी, फरमाया था कि ये शहीद तो होंगे लेकिन बड़ी मज़लूमियत के बाद। और कभी आप सिर्फ शहादत उस्मान पढ़ लें, यकीन करें आपके नैपकिन गीले हो जाएंगे। आज भी लोग और शहादतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस्मान गनी की शहादत बलवाइयों के हाथ कैसे हुई, पूरा वाक्य पढ़ा मैंने रात को, पूरी हिस्ट्री पढ़ के आई हूँ, लेकिन अब वक्त नहीं है। बस अल्लाह के नबी का जुमला नोट कर लें कि फितने में इन्हें मजलूमाना कत्ल किया जाएगा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 308 नंबर की। और इसी तरह से फरमाया कि इन फितनों के दिन उस्मान हिदायत पर होंगे, यानी खुशखबरी दे दी थी। और आपको था कि जब दुश्मनों ने इनके घर का हिसार किया तो लोग हज पे गए हुए थे मक्का में, मदीना आलमोस्ट खाली हो चुका था, वो लोग हाजियों के रूप में आए थे मदीना में, और आगे मक्का जाने की बजाय वहीं छुप गए इर्द गिर्द जगह बनाकर। और जब बाद में तकलीफ़ देनी शुरू की, लोगों ने कहा कि हज़रत उस्मान आप यहाँ से चले जाइए, आप भी मक्का चले जाएँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं नबी का दर्द नहीं छोड़ूंगा। और उनको अपनी शहादत का मौत की तरह यकीन था कि मैंने शहीद होना है, तो कहते थे कि मैंने मदीना शहर में शहीद होना है और मैं नबी का साथ नहीं छोड़ूंगा जबकि मेरे नबी का जसद अभी इधर मौजूद है। आपने उनको कहा था कि खिलाफत का लिबास ना उतारना, यानी तुम पे सख्ती की जाएगी, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन था, समय इनकी तबीयत में नरमी बहुत थी। इनसे पहले हज़रत उमर के दौर के जो 10 साल का रोब दबदबा था ना, शुरू के कुछ सालों में वो असर रहा, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको कहते नरम बंदे की बात नहीं मानते तो लोग ढीले होने लगे। इनकी नरमी से लोगों ने फ़ायदा उठाकर इनसे कुछ ऐसी बातें मनवानी चाहिए जो नहीं ये मानना चाहते थे। इसी दुश्मनी में फिर बिलाखिर हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो बात ये है कि इनकी खूबियों पे हमारी ज़ुबानें गूंग हो जाती हैं। अपने माल से जगह खरीद कर मस्जिद नबी की एक्सटेंशन की थी, और उस वक्त इन्होंने ये बात, जबकि अभी वो दौर था कि जिसको आप कह सकते हैं कि अभी खाना काबा और हरम और मदीना में मस्जिद नबी इतनी खूबसूरत नहीं बनी हुई थी, लेकिन जब लोग ज़्यादा होते गए, मस्जिद छोटी पड़ती गई, तो इर्द गिर्द से कितने घर खरीद कर आपने मस्जिद नबी को खुला करवा दिया था। और हज़रत उस्मान से ज़्यादा कोई इज़्ज़त वाला नहीं, अल्लाह के नबी की ये खुशखबरी भी मौजूद है इनके बारे में, और इसी तरह से बहुत कुछ। बस ये दुआ कीजिए कि आज हम इनका रूप जो पढ़ लें वो है जूदो सुखा का। इस पूरे पारे में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कि जिसमें आप देखेंगे कि सहाबाए कराम किस तरीके से अल्लाह ताला के रस्तों में माल खर्च करते थे, और वजह यह कि दिल खुल गया हुआ था, वजह यह है कि उनको पता चल गया हुआ था कि हम जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं ना, वो दे नहीं रहे, वो ले रहे हैं।